ओम शांति। सभी प्यार से बोलिए ओम शांति, गुड इवनिंग, नमस्कार एंड जय हिंद। मोस्ट रिस्पेक्टेड ऑनरेबल चेयरपर्सन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, रिस्पेक्टेड चौकियाल सर, रिस्पेक्टेड हमारी ऋतु बहन जी एवं सभा में उपस्थित माय डियर वंडरफुल फ्रेंड्स, भाइयों और बहनों, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू बी हियर टुडे। आज मुझे बहुत खुशी है और खास कर मैं शिपिंग एविएशन विंग का, विशेष हमारे आदरणीय कमलेश दीदी जी का बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं कि बहुत प्यार से उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए मुझे निमंत्रण दिया। और आज का जो पहला टेक्निकल सेशन है, इट्स ऑल अबाउट मेडिटेशन, द मिरेकल ऑफ लाइफ। मिरेकल को हिंदी में कहते चमत्कार, तो जीवन के चमत्कार के लिए मेडिटेशन कैसे हमें मदद करेगा, ऐसी एक सुंदर यात्रा पर हम चलेंगे। शुरू करते हैं करीब आधा मिनट के एक साइलेंस से। हम चाहेंगे आप सभी सीधे बैठें, मैं आपको एक लाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजाऊंगा। अच्छा दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये आधे मिनट में आपने क्या किया? व्हाट डिड यू डू इन दिस हाफ अ मिनट? आज से 22 वर्ष पहले जब मैं इसी तरह कॉन्फ्रेंस में यहां पर आया था, आप में से कितने भाई बहन हैं जो पहली बार इस विद्यालय में आए हैं माउंट आबू में? हाथ उठाए। ओ मेजोरिटी। सर आप पटवर्ती? सर यहां पे पहली बार आया। अच्छा, ओके, गुड, वेलकम सर। तो आज से 22 वर्ष पहले मैं भी आपकी तरह वहां सामने बैठा था और मुझे पता ही नहीं था कि आधा मिनट में हमको क्या करना होता है। आज मैं अपने सत्र के अंत में ये आधा मिनट में क्या करना चाहिए जिससे आपके जीवन में चमत्कार आ जाए, ये मैं आपको रहस्य जरूर बताऊंगा। आप इंटरेस्टेड हैं? यस और नो? यस। इट जस्ट रिक्वायर्स हाफ अ मिनट और हाफ अ मिनट में हम लोग ये देखेंगे कि क्या करना। ओके, इट्स ऑल अबाउट मेडिटेशन, द मिरेकल ऑफ लाइफ। बहुत टाइप के मेडिटेशन है, लेकिन यहां पर जो हम लोग जिस मेडिटेशन का जिक्र कर रहे हैं वो भारत का एक बहुत प्राचीन सिस्टम है जिसको हम लोग कहते हैं राजयोग। ये राजयोग क्या है इसके बारे में अगले 3 दिन तब जरूर सीखेंगे और समझेंगे। लेकिन राजयोग कैसे चमत्कार करता है मैं आपको बताता हूं। अगर यहां पर अबू रोड में, माउंट अबू में अगर कोई ज्योतिष होगा ना, तो आप लोग उस ज्योतिष के पास जाना। एंड बिलीव मी, एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस। ज्योतिष एक बहुत बड़ा शास्त्र है, एक बहुत अच्छा विज्ञान है। तो आप उस ज्योतिष के पास जाकर ना अपना भाग्य पूछते हैं, अक्सर लोग पूछते हैं ना। तो जो ज्योतिष होता है ना, वो धीरे से आपके हाथ को देखते हुए, आपका चेहरा देखकर कहेगा, बहन जी आपके जीवन में तो राहु केतु का ढिशुम ढिशुम चल रहा है। आप कहेंगे परफेक्टली राइट, आपको कैसे पता चला? तो ये ज्योतिष पता क्या करता है कि आपके हाथों के साथ साथ ना आपका चेहरे को देखता है। और कहते हैं दोस्तों, ये जो चेहरा है ना हमारा, ये हमारा मन का दर्पण है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड। अब एक काम करना, आज से अब इस राज्यों की यात्रा पर चल रहे हैं, अगले 3 दिन इस राज्यों को यहां सीखना, राइट, फिर से उसी ज्योतिष के पास जाना और फिर से अपना हाथ दिखाना। वो हाथ के साथ साथ आपका चेहरा देखेगा और कहेगा, बहन जी आपके जीवन में तो राजयोग आ गया। राजयोग इज कंसिडर्ड टू बी सर्वश्रेष्ठ योग। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में अगर ज्योतिष कह रहा है कि आपके जीवन में राजयोग है, इट इज नॉट लेस देन अ मिरेकल, वो चमत्कार से कोई कम नहीं है। वैसे भी दोस्तों, हमारे भाग्य को बनाने वाला भाग्य विधाता परमात्मा इस धरती पर उतर रहा ना, तो आपका हाथों को तो कभी देखेगा ही नहीं। हाँ, मनुष्य ज्योतिष वो देखते हैं, परमात्मा जो भाग्य विधाता है वो कभी आपके हाथों को इसलिए नहीं देखेगा क्योंकि आपने एक बहुत सुंदर एक डायलॉग सुना है, इन हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो परमात्मा भाग्य विधाता इस धरती पर उतर रहा है, अगर आपके भाग्य को देखना होगा तो पता है कहां देखेगा, आपके मस्तक पर, हियर, जहां पर हम संकल्प करते हैं, जहां पर हम सोचते हैं। तो राजयोग दो शब्द से बना हुआ है, पहला शब्द है राज, राज मीन्स रहस्य, और दूसरा जो शब्द है वो है योग। व्हाट डू यू मीन बाय योग? लोगों को लगता है योग मतलब कोई शारीरिक व्यायाम, जैसे मैं इंट्रोडक्टरी सेशन में सुन रहा था, लेकिन यहां मैंने भी यही समझता था, लेकिन जब यहां पर आया तो मैंने महसूस किया जिस तरह वियोग अर्थात बिछड़ना, योग अर्थात संबंध जोड़ना। कहते ना, क्या मेरा योग था जो आपके साथ मुलाकात हुई। योग मीन्स संबंध, इट मीन्स कम्युनिकेशन, स्मृति, याद, मेमोरी, दैट्स योग। और आज क्योंकि आज का एक बहुत हमारा भारत देश के लिए एक पवित्र दिन है, और ऐसे आज के दिन पर वी ऑल रिमेम्बर द हैप्पी रिपब्लिक डे। आज सुबह से लेकर आपके मोबाइल में कितने व्हाट्सएप मैसेज आए होंगे, राइट? यस, बिकॉज 15 अगस्त और 26 जनवरी को शायद हम लोग अपने देश को याद जरूर करते हैं। सो ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे, लेट्स सलूट एंड रिमेम्बर द सोल्जर्स हु सैक्रिफाइस द लाइफ टू प्रोटेक्ट आर नेशन। आज के दिन हम उन लोगों को भी याद करना चाहिए क्योंकि योग इज ऑल अबाउट कनेक्शन। आज हम लोग इतनी अच्छी तरह स्वतंत्रता के साथ साथ गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, वी आर एब्सोल्युटली एंजॉइंग द ब्यूटी फ्लोरा एंड फौना, द खुशबू ऑफ स्वतंत्रता। लेकिन उन दिनों, उन लोगों को भी हमें याद जरूर जरूर करना चाहिए, राइट? आप में से कितने लोगों को यहां पे ठंडी लग रही है, वो जरा हाथ उठाएं। थोड़ी बहुत तो लग रही है ना। ये जो अबू रोड है ना, इसका जो टेम्परेचर आज शायद इस समय पर शायद कुड बी 17-18 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आप माउंट अबू जाएंगे तो माउंट अबू इज एट अ हाइट ऑफ 4000 फीट अप सी लेवल माउंट अबू में। एक दिन आपका वहां पे ट्रैवल का प्रोग्राम भी बनाया गया होगा। वहां की जो टेम्परेचर सुबह और शाम को इस अप्रोक्सीमेटली 6-8 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट? ज्यादा ठंडी नहीं है, है ना, राइट? लेकिन विश्व के सबसे ऊंचाई की युद्ध भूमि इंडिया पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर पर सियाचिन ग्लेशियर एट अ हाइट ऑफ 28,000 फीट, आज के समय पर उसकी टेम्परेचर कुड बी -53 डिग्री सेंटीग्रेड टू -83 डिग्री सेंटीग्रेड आज के समय पर। और ऐसे समय पर हमारे जवान और सैनिक इस देश की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। कितना ना उनके प्रति स्नेह प्यार, कितना ना उनके प्रति कृतज्ञता। मैं कुछ अपनी मदर स्मृतियां, क्योंकि ऋतु बहन उसका जिक्र किया, तो मैं उन अच्छी स्मृतियों को जिक्र करता हूं जहां पर मेरा यह परम सौभाग्य रहा है इंडियन आर्मी ने ब्रह्मा कुमारीज के डिफेंस टीम को वहां पर भेजा टू टीच देम राजयोग। मैं आपको ये फोटोग्राफ क्यों दिखा रहा हूं, दो कारण है, आज हैप्पी रिपब्लिक डे है, और दूसरा कारण मैं आपको जरूर जरूर बताऊंगा। मैं वहां सियाचिन बैटल स्कूल में हूं, और मैं यहां पर इस बैटल ट्रेनिंग स्कूल जो 12,000 के फुट पर है, राइट, माउंट अबू इज एट 4000 फीट अप, उसके 3 गुना आगे, और वहां पर ये सारे सियाचिन स्टाफ की ट्रेनिंग की जाती है, फिर उनको धीरे 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 28,000 फुट तक उनकी पोस्टिंग होती है। तो मैं 12,000 के फुट पर हूं, फिर उन्होंने मुझे 18,000 के फुट पर लेकर गए, और फिर हमारे जवान 28,000 के फुट पर। तो अक्सर मैं ये फोटोग्राफ्स आप सबको दिखाकर यह पूछना चाहता हूं कि उस 28,000 के फुट पर, बताइए दोस्तों, अगर किसी जवान को अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है तो कौन सा व्यायाम करेगा? वॉकिंग नहीं कर सकता है, जॉगिंग नहीं कर सकता है, प्राणायाम तो बिल्कुल बोलना ही नहीं, क्योंकि अगर आपने उस ऊंचाई में गहरी श्वास लिया फिर वहीं से आपको ऊपर जाना पड़ेगा। टेम्परेचर इज वेरी लो, प्रेशर इज वेरी लो, ऑक्सीजन कंटेंट इज टू लो, यस। तो वहां पर सिर्फ एक कार्य कर सकते हैं, जहां पर शरीर का व्यायाम हम नहीं कर सकते हैं वहां पर हम मन का व्यायाम करें। राजयोग ये मन का व्यायाम है, राइट? अगर आपको थोड़ी ठंडी लग रही है तो जरा खड़े हो जाए, खड़े हो जाओ प्लीज, कैन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्टैंड अप, यस, राइट? और 2 मिनट राइट, हम लोग सियाचिन स्टार्स को याद करते हैं. मैं आपको उस कनेक्शन पर हम भी खड़े हो सकते हैं. और आज मैं उन स्मृतियों को लेकर आता हूं क्योंकि आज रिपब्लिक डे है. तो लेट्स बिगिन कनेक्टिंग आवरसेल्व्स टू ऑल द सोल्जर्स एंड जवान्स. We salute the Indians who choose to brave the most difficult battlefield of the world, the Siachen, minus 53, 21,000 feet up. थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन. यस, यह है कनेक्शन. योग मीन संबंध जोड़ना. राज रहस्य भी कहते हैं और राज का दूसरा अर्थ होता है राजा, किंग. किंग का अर्थ होता है मास्टर ऑफ योर ओन इमोशंस. और आज राज्यों को समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत सुंदर कहानी की तरफ लेकर जाता हूं. बचपन में आपने और हमने एक बहुत सुंदर कहानी सुनी थी और पढ़ी थी. उस राजा की कहानी थी जिसका नाम था किंग मिडास. आप में से कितने लोगों ने ये कहानी सुनी है और पढ़ी है? गुड. कुछ लोगों ने शायद नहीं पढ़ी है तो मैं आपको थोड़ा सा उसका एक वीडियो दिखाता हूं. मुझे वीडियो बहुत अच्छा लगता है और मुझे पता है मुझे आपको राजयोग सिखाना है, तो आई एम अवेयर. लेकिन ये बहुत सुंदर बचपन की कहानी हमको राजयोग क्या है समझने में मदद करेगा. लेट्स वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑफ किंग मिडास. वो इंग्लिश में उसकी वो वीडियो बनी हुई है, मैं आपको उसका थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट करता रहूंगा. उसको कहते हैं किंग मिडास एंड द गोल्डन टच. ये जो किंग मिडास है उसकी छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है मैरी गोल्ड.
थैंक यू माय डियर, दे लवली, इट्स जस्ट अ पिटी दे आर नॉट.
बस किंग मिडास का एक प्रॉब्लम था कि उसको सोने से बहुत प्यार था, स्वर्ण से.
आई कांट मैरी गोल्ड, आई हैव टू काउंट माय गोल्ड.
उसकी बच्ची कहती है पापा बाहर इतना सुंदर बगीचा है, आप मेरे साथ आकर थोड़ा खेलो ना. तो उसका पापा जो कहता है जिसको मैरी गोल्ड से ज्यादा प्यार उनके सोने से था, वो कहता नहीं, आई हैव टू काउंट माय गोल्ड.
प्लीज आई गो प्ले सो आई कैन गेट बैक टू वर्क.
ऑलराइट,
यू आर नॉट सैटिस्फाइड विद द गोल्ड.
फिर एक दिन उनके पास एक फरिश्ता आता है, एंजल, मैसेंजर ऑफ गॉड. वो कहता आप अपने इससे संतुष्ट नहीं हो क्या? तो किंग मिडास कहता है बस मैं, मेरी ये कल्पना है कि मैं जिसको भी स्पर्श करूं वो स्वर्ण बन जाए, सोना बन जाए.
Then listen closely. At morning's first light, you will get your wish, King Midas.
तो फरिश्ता कहता है कल सुबह से आपका सारा स्वप्न साकार हो जाएगा.
What did you say?
सुबह उठते ही सारे जिसको स्पर्श करता है वो सोना बन जाता है.
Golden touch. I have it.
सब को टच करता रहता है.
I must tell the news. Marigold! Finger ponga boo. I'll keep it. Breakfast, please.
अब वो ब्रेकफास्ट के टेबल में जाता है. नाश्ता का समय. बचपन की कहानी.
That's a nice juicy piece.
और सब सोना बन जाता है.
How could I eat?
वो कहता मैं कैसे खाऊं, मैं कैसे पीऊं. तो बच्ची दौड़ दौड़ कर आती है और कहते पापा मेरा जो गार्डन है वो पूरी तरह उसकी वो नष्ट हो गया है, सारा सोना बन गया है.
Marigold, we are rich, richer than anyone.
I want my flowers back.
Marigold, we can buy all the roses in the world.
I want my roses back. They don't look and smell so pretty now.
Now dry your tears and have some breakfast, Marigold. We should be celebrating our good fortune. But it appears that I can't eat.
लेकिन वो खा नहीं पाता है. और कुछ समय के बाद उसकी बच्ची भी गोल्ड बन जाती है, क्योंकि उसको भी वो स्पर्श कर लेता है.
उसका
जीवन बड़ा दुखमय हो जाता है. फिर वही फरिश्ता आकर कहता है कि अब आप फिर से नदी में डुबकी लगाओ, वो पानी लेकर जहाँ पर भी छिटकोगे वो फिर से ठीक हो जाएगा. अब वो पानी के उस है ना ठंडक को महसूस करता है.
Smell the rose. This is my last wish ever.
I'm wet. What are you doing?
Why, celebrating, my darling daughter.
बस कहानी का अंत इस तरह हो जाता है. हम अपने जीवन को भी देखें, हम चारों तरफ जड़ चीजों के पीछे इतना भाग रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे घर में जो बच्चे हैं वो भी कोई चमत्कार से तो कम नहीं है ना. इट इज ऑल्सो मिरेकल. यस, हम उनके लिए कितना समय देते हैं, उनके साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं. मैंने एक राजा की कहानी से स्टार्ट की और आज अंत में भी मैं राजा की कहानी से ही वाइंड अप करूंगा, जहां पर हमें राज्यों क्या है उसको बहुत क्लियर कट समझने में आपको मदद मिलेगी. राइट, नेवर फॉरगेट हु यू आर, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल सिटिंग ओवर हियर यू योरसेल्फ इज अ मिरेकल. हम सब यहां जो बैठे हैं कोई चमत्कार से कम नहीं है. राज्यों तीन स्टेप्स है इसके, अब अगले तीन दिनों में जरूर जरूर सीखेंगे. लेकिन मैं आज आपको संक्षिप्त में, ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन संक्षिप्त में ये तीन स्टेप्स मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा. द फर्स्ट स्टेप इज सिट, सेकेंड स्टेप इज सेट और तीसरा स्टेप है गेट. पहला स्टेप क्या है, थोड़ा जोर से बोलिए. नहीं नहीं, थोड़ा डराइए नहीं ना, थोड़ा प्यार से बोला. बाप रे, आप लोग डरा भी देते हो. थोड़ा प्यार से बोलिए. यस, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, गेट. बस राज्यों का ये तीन सिंपल स्टेप है, सिट, सेट एंड गेट. बहुत सिंपल है दोस्तों. अगर हम इसको विज्ञान के फिलोसफी से समझे तो अगर आपके पास रिमोट कंट्रोल है ना, तो सबसे पहले आप आराम से बैठो, अपने हाथ में वो रिमोट लो, जो आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए उसमें आप सेट करो. यस, जैसे ही आप उस फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं आपके टेलीविजन में आपको मिल जाता है. अगर एक जड़ चीज से इतना क्लियर कट हो सकता है तो आप और हम तो चैतन्य जीव है ना. क्या हम अपने संकल्पों के द्वारा वो चमत्कार जो जीवन में हम चाहते हैं नहीं लेकर आ सकते क्या? 100% लेकर आ सकते हैं. इनको हम धीरे धीरे समझेंगे कि राज्यों के तीन कदम कौन से हैं. सबसे पहला है सिट, आराम से आप बैठो. और जैसे ही आप बैठते हैं, हम लोग अक्सर जब हम बैठते हैं या खड़े होते दर्पण के सामने में, तो अक्सर हमारी जब नजर अपने एक मिरेकल पर पड़ती है तो एक होता है लुकिंग गुड. मैं ठीक दिख रही हूं क्या? एम आई लुकिंग गुड? बस राज्यों में थोड़ा सा एक कॉन्शियसनेस को, अपनी स्मृति को परिवर्तन करना है फ्रॉम लुकिंग गुड टू फीलिंग गुड. राइट, लुकिंग गुड तो ठीक है, लेकिन लुकिंग गुड से ज्यादा फीलिंग गुड. मैं जो हूं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं. राइट, एक काम करना, आज ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा ना तो अपने बच्चे, आपके बच्चे सारे विश्व में कहीं पर भी होंगे ना, तो उनको फोन करना और एक डायलॉग बोलता हूँ, वो डायलॉग आज आप उनसे बोलना, राइट? कौन कौन डायलॉग बोलेंगे वो जरा हाथ उठाइए। वाह, अच्छी ऑडियंस है, हैं? वो मैं पिछली बार साइंटिस्ट इंजीनियर्स का कॉन्फ्रेंस कर रहा था, मैंने पूछा कौन कौन डायलॉग बोलेगा, एक वैज्ञानिक खड़े होकर कहता स्वामी भाई पहले डायलॉग बोलिए फिर डिसाइड करेंगे बोलने। बड़े दिमाग वाले होते ना आप लोग, का दिल बड़ा अच्छा है। तो एक काम करना, आज फोन कर अपने बच्चे, देर ऑल मैरीगोल्ड, आपके घर में जो जो बच्चे है वो मैरीगोल्ड है, राइट? आप उनसे बहुत प्यार से डायलॉग बोलना, आप कहना आप जो हो जैसे हो हमारे अपने राजा बच्चा हो। कैसा लगा डायलॉग? थोड़ा रिपीट करिए, आप लोग बड़ों की मेमोरी का कोई भरोसा नहीं है, आप लोग 15 मिनट में भूल जाएंगे। आप मेरे साथ रिपीट करिए, आप जो हो जैसे हो राजा बच्चा हो। बोरीवली में मैं प्रोग्राम कर रहा था, जब प्रोग्राम खत्म हो रहा एक भाई साहब आकर कहते हैं स्वामी भाई आपका डायलॉग बहुत अच्छा लगा, बट स्मॉल करेक्शन। मैंने कहा यस आई एम ओपन फॉर करेक्शन, व्हाट करेक्शन? बोला सर मेरी बच्ची साइड में बैठी थी, मैंने सोचा पता नहीं शाम तक भूल जाऊंगा कि नहीं, वही चालू गए अब जो हो जैसे हो राजा बच्चा हो। तो बच्ची खड़े होकर कह दिया पापा राजा बच्चा नहीं बोलो, रानी बच्ची बोलो। हमारे तो उधर दिल्ली में प्रोग्राम करा था, तो एक भाई साहब कहते स्वामी भाई आज ऐसा लग रहा कि घर में जाओ अपने जवान बेटे को गले लगाओ, जादू की झप्पी, कितने वर्ष हो गए गले नहीं लगाया। तो मैंने पूछा सर जानना चाहते हो आप गले क्यों नहीं लगा पाते हो? बोला स्वामी भाई इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं आपको टेक्निकल जवाब देता हूँ, मेरे लैपटॉप में जो वीडियोस है जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसको तो मैं मॉनिटर पर अपलोड कर सकता हूँ ना। बोला सर आप कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा बहुत सिंपल है सर, हमारे हेडटॉप कंप्यूटर में जो फोल्डर है वही तो मॉनिटर स्क्रीन पर आएगा ना। तो उन्होंने सोच कर कहा सर इस कंप्यूटर में सारा वायरस भर गया सर, मैंने कहा डिलीट करो और अच्छे फोल्डर्स को डाउनलोड करो। अगला 3 दिन जितना हो सके अपने सेटटॉप कंप्यूटर में अच्छे फोल्डर्स को डाउनलोड करो। और अगर आप पूछेंगे कि ये डायलॉग बोलने से आपके घर का वास्तु हीलिंग कैसे होता है, राइट? क्योंकि शास्त्र वो, क्योंकि जड़ से ज्यादा आपकी जो फ्लो ऑफ एनर्जी है ऊर्जा, राइट? मैं इंट्रोडक्टरी सेशन में सुन रहा था कैसे वो ऑर्गेनिक शाश्वत योगिक खेती होता है। आप में से अगर कोई वैज्ञानिक होगा तो शायद उस बात को कितना विश्वास करेगा, लेकिन आज मैं आपको वैज्ञानिक स्तर से समझाऊंगा कि ये डायलॉग बोलने से आपके जीवन का वास्तु हीलिंग, आपके घर का वास्तु हीलिंग कैसे होगा, ये मैं आपको जरूर जरूर बताता हूं। देयर इज अ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट हिज नेम इज डॉक्टर मास्टरो इमाटो, जापानीज वैज्ञानिक है, राइट? उन्होंने बहुत सुंदर किताबें लिखी है और एक किताब है उनका वॉटर टॉक्स, पानी बातें करती है। दोस्तों वहां बैठकर आप जो डायलॉग बोल रहे हो ना वो एक ऊर्जा है, वो ऊर्जा अगर हमारे सामने कोई बॉटल है उसके अंदर पानी रखा हुआ है तो पानी के वो क्रिस्टल को चेंज कर देता है। विश्वास नहीं करेंगे आप तो डॉक्टर मास्टरो इमाटो का ये डॉक्यूमेंट देखना और उनकी किताबें पढ़ना और घर में या आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, वैज्ञानिक स्तर पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। क्या किया हम लोग देखते हैं, डॉक्टर मास्टरो इमाटो ऑडियो देते जरा।
Another interesting experiment. He placed rice into 3 glass beakers and covered.
तो डॉक्टर मास्टरो इमाटो ने 3 ग्लास लिया, उसमें चावल भरे और उसमें पानी भर दिया।
थैंक यू टू वन।
और पहले ग्लास बीकर में जाकर उन्होंने थैंक यू कहा, धन्यवाद। दूसरे में कहा राइट।
एंड द थर्ड वन ही कंप्लीट टू द सेकंड। एंड द थर्ड वन ही कंप्लीटली।
पहले में उसने कहा राइट थैंक यू, दूसरे में कहा यू आर एन इडियट, गलत शब्द का, और तीसरा ग्लास बीकर में उसमें उसको माइंड ही नहीं किया और निकल गया, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। 1 महीने तक वही बोलते रहे।
After 1 month,
after one month,
the rice that had been thanked began to ferment.
पहला जिसको थैंक यू बोला तो धीरे से फर्मेंट होने लगा और उसमें अच्छी खुशबू आने लगी। दूसरा
ए स्ट्रॉन्ग प्लेजेंट अरोमा,
अरोमा मीन्स खुशबू। और दूसरा
राइस इन द सेकंड बीकर टर्न्ड ब्लैक,
काला होने लगा। और तीसरा
एंड राइस दैट वाज इग्नोर्ड बिगन टू रॉट,
और वो पूरी तरह रॉट मतलब सड़ने लगा। जस्ट देखिए अगर हमारे संकल्प अगर एक जड़ चीज को इतना ज्यादा प्रभावित कर सकता है तो सुबह से शाम तक हम अपने घर में बैठकर क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हमारे घर में जो टीवी चल रहा है उसके सारे वाइब्रेशंस, और फिर वास्तु एक्सपर्ट को बुलाते हैं, वो कहते हैं ये दीवार तोड़ो वो दीवार तोड़ो। अब भाई वन बेडरूम हॉल किचन मुंबई में अब कितना दीवार तोड़ सकते वो तो मुझे नहीं पता, बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई, इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग। सबसे इजिएस्ट मेथड है आप अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाओ। राजयोग में जब आप बैठते हो, सो द फर्स्ट स्टेप इज दिस, रिलैक्स होकर बैठो और एक डायलॉग जरूर अपने आप से बोलो। हमारे शरीर का 70% इज वाटर कंटेंट, तो हर दिन सुबह उठो अपना चेहरा मुस्कुराते हुए, राइट, और एक डायलॉग बोलो। सभी बोलिए इफ आई एम हैप्पी, थोड़ा खुशी से बोलिए ना, चेहरे में थोड़ी इमोशंस आने चाहिए। बाप रे, कुछ लोग चेहरे, कुछ लोगों का चेहरा देख के डर लगता है। इफ आई एम हैप्पी, थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलिए ना, इफ आई एम हैप्पी, पीसफुल एंड लवफुल, आई कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। सो लेट मी आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है, जिंदगी क्या है? आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है ना? बहुत अच्छा। मैं अपने स्टूडेंट से कोई भी प्रश्न पूछता तो जवाब नहीं मिलता तो मेरे बच्चे स्टैंडर्ड जवाब देते, सर आउट ऑफ सिलेबस, सर आपने हमें पढ़ाया ही नहीं, राइट? कभी कभी मुंबई में ना ये बच्चों का मैं इंटरव्यू लेता हूं, और इंटरव्यू लेने वाला मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, खास करके ये MBA स्टूडेंट्स का इंटरव्यू। तो जब भी कोई स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए आता है तो 4 साल में इंजीनियरिंग में क्या पढ़ा मैं बिल्कुल नहीं पूछता हूं, लेकिन मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन है, व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है? तो कुछ बच्चे जवाब देते, सर लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है, मंजिल नहीं। कुछ बच्चे कहते, सर लाइफ इज अ चैलेंज, सर जीवन बहुत संघर्ष है। सुनते ही साथ मुझे समझ में आ जाता है कि ये बंदा लोकल ट्रेन चढ़कर आया है, क्योंकि मुंबई में लोकल ट्रेन चढ़ना संघर्ष, उतरना तो उससे बड़ा संघर्ष। देयर वाज वन बॉय हु वाज स्ट्रगलिंग विद द आंसर्स ऑफ लाइफ। जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो मैंने उस लड़के को कहा, दैट वाज वेरी नाइस इंटरेक्टिंग विद यू, हम आपको भविष्य में मिलना पसंद करेंगे। तो ये लड़का दरवाजे तक जाता, कुछ क्षणों तक वेट करता, वापस आता है, मुझे देखकर कहता है, सर इफ यू डोंट माइंड कैन आई गेट योर मोबाइल नंबर। मैं कहा, व्हाट सर, प्लीज आप अपना मोबाइल नंबर शेयर कर सकते हो क्या? अब इतनों को मोबाइल नंबर देते, वाई टू क्रिएट ए सीन। मैंने कहा नोट करिए, फटाफट नोट किया, थैंक यू सर करके निकला। 6-8 मिनट के बाद ना मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया। तो जब मैंने पढ़ा तो जीवन की एक बहुत सुंदर परिभाषा, तो मैंने अपने पैनलिस्ट के साथ शेयर किया, सबको बहुत अच्छा लगा। तो एक फैकल्टी ने कहा, सर ये जो लड़का गया ना शायद इसी ने भेजा होगा। तो मैंने कहा मैं वेरीफाई करता हूं, मैंने उसी नंबर पर रिंग किया, वो लड़के ने फोन उठाया। वेरीफिकेशन के बाद मैंने बड़े प्यार से उस लड़के से पूछा, माई डियर बॉय अचानक जीवन के बारे में कहां से पता चला? और ये लड़का मुझे फोन पर जवाब देता है, सर गूगल सर्च इंजन सर। उस दिन एक बात मैंने महसूस किया कि हमारे बच्चे जो है ना जीवन के बारे में गूगल में ढूंढ रहे हैं, क्योंकि शायद हम माता पिता और हम शिक्षक बच्चों को जीवन क्या है बता नहीं पा रहे। आज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज जीवन की परिभाषा जो मैंने अपने विद्यार्थी से सीखा ना, घर जाकर अपने बच्चों को सुनाना, व्हाट्सएप नहीं करना प्लीज फॉर गॉड सेक। अगर हो सके ना तो यहां बैठकर एक पत्र लिखना उसको, राइट? और ये पत्र जो है ना उसके नाम पर लिखना, वो उड़ते उड़ते उड़ते, आप शिपिंग एविएशन के हो ना, तो उड़ते 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 आप पहुंचने तक कुरियर कर देंगे। आप कुरियर करना, आप पहुंचने के पहले आपका प्रेम पत्र आपके बच्चे तक मिलेगा। आपको पत्र लिखना या नहीं लिखना यह आपका चॉइस है, लेकिन हमारे मुंबई के इतने सारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, उसके पीछे एक कारण है कि उन्होंने कभी भी अपने माता पिता के द्वारा एक प्रेम पत्र रिसीव नहीं किया, राइट? स्टार्टिंग में क्या लिखना है, एंडिंग में क्या लिखना है, मैं बता देता हूं। बीच में आपको जो भी राम कहानी लिखना है जरूर जरूर लिख सकते हैं, राइट? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पापा जो थे ना मिलिट्री वाले पापा थे, राइट? कभी घर में जाते तो सीधे मुंह कभी बात नहीं करते थे, वाया हमेशा प्रोटोकॉल बात करते थे, वो मम्मा को बोलते थे, मम्मा मुझको बोलती थी। लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था ना, तो हर महीने पापा मुझे एक लेटर लिखते थे, स्टैंडर्ड एडवाइस होता था, अच्छे से पढ़ाई करना है ना, टीचर्स को रिस्पेक्ट करना, हॉस्टल में बिल्कुल मस्ती वस्ती नहीं करने का, सिगरेट बिल्कुल स्मोक नहीं करना, हर दिन वो सिगरेट पीते थे। उस कॉलेज की उम्र में मैंने एक बात सीखा, उस समय मैंने महसूस किया कि मेरे पापा को मुझसे बहुत ज्यादा प्यार है, बस उनकी इतनी प्रॉब्लम थी कि उस प्यार को कभी एक्सप्रेस कैसे करना है, उनकी मिलिट्री ने कभी उनको सिखाया नहीं था। ये बात मैंने उनके प्रेम पत्र से रिसीव की। अनफॉर्चुनेटली वो ऑप्शन हमारे बच्चों के पास नहीं है, आप प्रेम करते हो, लेकिन आई लव यू हर दिन सुबह शाम बोलते नहीं हो, राइट? लेकिन आपके अंदर इतना प्रेम समाया हुआ है। तो ये प्रेम पत्र से जरूर जरूर ये बात मिलती है। क्या लिखना है, जीवन क्या है, जिंदगी क्या है? तो उस लड़के ने मैसेज भेजा था, देखो तो ख्वाब है जिंदगी, लाइफ इज अ ड्रीम। देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, लेकिन ईश्वर कहते हैं मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, सदा मुस्कुराते रहो तो आसान है जिंदगी। सदा मुस्कुराते रहो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेटेस्ट जीएसटी के हिसाब से दो बातों पर टैक्स नहीं लगाई, एक तो मुस्कुराने पर, दूसरा जरा जोर से तालियां तो बजाओ। यस, जितना हो सके खुश रहो, जितना हो सके मुस्कुराते रहो। एक छोटा सा परिवर्तन यहां से लेकर जाना। आज तक बच्चों कहते थे बच्चे बिकम सक्सेसफुल, छोटा सा परिवर्तन करना, बच्चों को घर जाकर बोलना, बच्चे अपार्ट फ्रॉम बिकमिंग सक्सेसफुल आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। यस, मैं चाहती हूं कि आप खुश रहें, और ये हैप्पीनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, राइट? दूसरा है सेट करना। और सेट क्या करना है? फ्रॉम अ वेरी डिस्टर्ब्ड माइंड वी हैव टू सेट आवरसेल्फ टू अ स्टेबल माइंड। हमारा जो राजयोग जो है ना, ये शरीर का एक्सरसाइज नहीं है, जैसे बताया गया था ये मन का एक्सरसाइज है, राइट? मन के द्वारा कम्युनिकेट करना, इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। जैसे दोस्तों मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, योग है, बात कर रहे हैं आपका और हमारा योग, आप लोग भी बैठे हैं, मैं भी यहां पर हूं। अगर मैं इंग्लिश में बोलता हूं इट्स ओके, अगर मैं हिंदी में बोलता हूं तो आपको अच्छा लगता है, പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് മലയാളത്തെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? मैंने कहा यहां खड़े होकर अगर मैं मलयालम में बोलता जाऊंगा तो क्या होगा, राइट? सब लोग हमारी आदरणीय मीरा दीदी और कमलेश दीदी को जाकर पूछें किसको उठा के लेकर आए, इडियट प्रोफेसर, अरे यहां पर मलयालम में बोलता है, राइट? तो जो ऑडियंस होती है उस ऑडियंस को समझकर हमें कम्युनिकेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू कम्युनिकेट विथ माई कंप्यूटर, अगर हमने बाइनरी और 01 को समझा तो हम इस लैपटॉप के साथ बात कर सकते हैं। उसी तरह राज्यों के लिए मन, अच्छा बताइए मन की भाषा कौन सी है? व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द माइंड? अरे बाबा वो दिल की भाषा, अभी इधर का उधर फिट नहीं करो, दिल की भाषा, मैं मन की भाषा पूछ रहा हूं। हाँ, मन की भाषा, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो हर छोटे बच्चे को बहुत अच्छा लगता है बचपन में, अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग गेम्स, गेम्स तो यूनिवर्सल है सब्जेक्ट, एंड दैट इज ड्रॉइंग। मन की भाषा है चित्र, मन की भाषा है इमेजेस। तो अगर हमें योग करना है ना, तो इस मन को समझना पड़ेगा, इसकी वो विशेषता समझनी पड़ेगी कि हम मन के द्वारा कैसे चित्र बना सकते हैं। धीरे 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 आप ये सीखेंगे। ऐसे आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों ने बहुत सुंदर बात बताई है, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। जीवन में अगर चमत्कार चाहिए दोस्तों, तो आपको इस मन की उड़ान को यूज करना पड़ेगा, राइट? यहां पे शिपिंग एविएशन की बात है, मैं आपका थोड़ा सा जनरल नॉलेज टेस्ट करता हूं। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूंगा हु इन्वेंटेड एरोप्लेन, तो क्या जवाब देंगे? वाह, है ना, ब्रदर्स का मान रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, डियर सिस्टर। यस, हमको भी यही पढ़ाया गया था, राइट? बचपन में हम आपकी तरह हमने भी यही पढ़ा था, इट्स वॉज राइट ब्रदर्स हु इन्वेंटेड द एरोप्लेन। आई रियली अप्रिशिएट योर आंसर। अभी मैं फिर से आपको वो स्मृतियों को लेकर जाता हूं जहां पर राइट एविएशन स्टार्ट हुआ था। वो वीडियो देखने के बाद हम फिर से वही प्रश्न आपसे पूछेंगे, एंड इफ यू वॉन्ट टू चेंज योर आंसर यू आर मोस्ट वेलकम, राइट? अ ब्यूटिफुल, लेट्स गेट ऑन टू द इन्वेंशन ऑफ एन एरोप्लेन। एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन द माइंड एंड नंबर टू इन रियालिटी। इस संसार में जो भी घटना घटती है वो दो बार होता है, पहले आपके मन में और दूसरा यथार्थ में।
Ever since man started to think, he's wanted to fly. But flying was strictly for the birds. And continued to be so for thousands of years. Eternally optimistic, kept trying. encouraged by his many successes, man kept strife. Through his genius and his inventiveness, he managed to get his machines off the ground. And sometimes he brought them down again. All over the world, early pioneers were making flying history. And in Italy, Count Emilio Ponticelli made what many people claimed was the first long-distance flight. There was no doubt about it. By 1910, flying had become the rage. Man had conquered the air, and people everywhere were all agog about those magnificent men.
So, aeroplane is nothing short of a miracle, right? अब ये वीडियो देखने के बाद अगर मैं वही प्रश्न फिर से दोहराता हूँ, Who invented aeroplane? Sister, brothers, क्या क्या हुआ? Yes, yeah, right. Who invented aeroplane? अभी क्या जवाब देंगे आप? वीडियो देखा आपने? Right? कोई भी इन्वेंशन किसी व्यक्ति को जब आपने वीडियो देखा ना तो यू कैन नॉट गिव अ क्रेडिट बिकॉज इट वॉज अ स्मॉल डेल्टा एक्सचेंज दैट वॉज हैपनिंग इन एवरी इन्वेंशन एंड डिस्कवरी माय डियर सिस्टर अगर आपको क्रेडिट किसी को देना ही है ना तो उस पहले व्यक्ति को देखना देना जिसने आसमान में पंछियों को उड़ते हुए देखते हुए मन में संकल्प आया कि वन डे ह्यूमन बींग्स कैन फ्लाई लाइक बर्ड्स अगर आपको क्रेडिट देना ही है तो उस व्यक्ति को देना चाहिए राइट इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज राजयोग में ये मन की उड़ान ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण राइट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एक होता है सिट नंबर टू इज सेट और तीसरा है गेट राइट और अंत में मैं इसको राजयोग के साथ जरूर जरूर कनेक्ट करूंगा तो क्या गेट है व्हाट डू यू वांट टू गेट बहुत सिंपल है लिमिटेड वेल्थ टू अनलिमिटेड हैप्पीनेस थोड़ा सा धन के बजाय पर क्या हम अताह खुशी की तरफ नहीं कर सकते क्या मैं आपको एक छोटा सा आज एक क्वेश्चन पूछूंगा और ये क्वेश्चन मुझे लोगों से पूछना बहुत अच्छा लगता है और अगर आप में से कोई भी मुझे सही जवाब देगा तो मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा आपने फिल्म देखी है थ्री इडियट्स यस उस फिल्म में रैंचो के प्रिंसिपल थे डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे वो हमेशा ना अपने साथ एक पेन को लेकर घूमते रहते हैं और उनका पेन होता है पेन ऑफ एक्सीलेंस राइट तो मैंने जब मुंबई में अपने स्टूडेंट्स को ये सेशन करा रहा तो किसी ने मुझे पूछा सर इस पेन से स्पेस में लिख सकते क्या मैंने कहा स्पेस वेस में नहीं लिख सकते धरती में मुंबई यूनिवर्सिटी का तू अपने इंजीनियरिंग एग्जाम लिख सकता है सो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट राइट तो मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछता हूं अगर आप में से कोई भी सही जवाब देगा आई विल गिव यू दिस पेन लेकिन शुरू करने के पहले इस सभा में सबसे छोटे कौन बैठे हैं जरा हाथ उठाओ चुटके जो बैठे हैं छोटू इधर आ जा तू आ जा ये हमारे देश का भविष्य भारत रत्न है आ जा अरे वाह जरा इनके लिए जरा जोर से तालियां बजाओ इधर आ जा हाँ हाँ आ जाओ चप्पल वहां रखकर आ जाओ ना हाँ यस प्लीज कम यस कम माय डियर बॉय आपका नाम क्या है जीवन बाबा है ना जीवन आ जा जीवन कहाँ से आया जीवन उरन से आया है यहाँ पर पहली बार आया कौन से क्लास में पढ़ता है थोड़ा जोर से बोल
फोर्थ
अच्छा कौन से स्कूल में
IIGNPT
अच्छा यहाँ आकर कैसा लग रहा है
अच्छा
और यहाँ का सेशन में कुछ समझ में आ रहा है वेरी गुड है ना जीवन बैठ जा अच्छा जीवन देख आज ना इस प्रोग्राम के आप मुख्य अतिथि हो ठीक है चीफ जज हो मैं एक प्रश्न इन सभी ना ये सारे है ना बहुत अंकल आंटी बड़े बुद्धिशाली हैं इनसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा जीवन आपको जो अच्छा जवाब लगता है ना वो आप डिसाइड करना फिर आपके द्वारा हम उनको गिफ्ट देंगे पेन ऑफ एक्सलेंस ठीक है क्या करना है आपको क्या करना है हाँ मैं इनको एक प्रश्न पूछूंगा इन सभी जो उत्तर देंगे उसमें से सबसे अच्छा उत्तर जो जीवन को अच्छा लगा ना वो आप सेलेक्ट करना आप कर पाएंगे हाँ जी बोलो यस गुड ठीक है तो थोड़ा सा हम लोग एक सिंपल सा प्रश्न है ठीक है सिंपल सा प्रश्न सा मिलियन डॉलर क्वेश्चन मैं हर साल मुंबई में ना ये जीवन जैसे छोटे छोटे बच्चों को सेशन लेता हूँ और मुझे सेशन लेना बहुत अच्छा भी लगता है राइट अब 2017 में ये एक हफ्ते का प्रोग्राम होता है छोटे छोटे बच्चों को. तो एक बच्ची आई जिसका नाम था अनन्या, स्टडिंग इन द सेवेंथ स्टैंडर्ड, अप्रोक्सीमेटली 10-11 वर्ष की बच्ची है. उसने आकर कहा, स्वामी सर, पिछले साल भी मैंने आपका एक हफ्ते का प्रोग्राम अटेंड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, इस साल भी मैं अटेंड करना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करती हूँ. तो मैंने पूछा, बताइए अनन्या, क्या रिक्वेस्ट है? तो इस बच्ची ने कहा, सर आपको याद होगा पिछले साल आपने एक होमवर्क दिया था, जीवन ध्यान से सुनना, पिछले साल मैंने हम सभी बच्चों को होमवर्क दिया था. होमवर्क ये था, मैंने सभी बच्चों से कहा था कि एक हफ्ता घर में जाकर अपनी मम्मा को बहुत स्नेह देना, बहुत प्यार देना, बिल्कुल मम्मा से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बिल्कुल मम्मा से गुस्सा नहीं करना, राइट? अनन्या कहती है, सर पिछले साल तो मैंने होमवर्क बड़े रिलीजियसली किया था, राइट, मुझे बहुत अच्छा लगा, इस साल भी मैं आपका वो प्रोग्राम अटेंड करना चाहती हूँ विद अ स्मॉल सिंपल रिक्वेस्ट, पिछले साल जो आपने होमवर्क दिया था इस साल प्लीज मत देना. मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? मम्मा को रिस्पेक्ट देकर अच्छा नहीं लगा क्या? बोला, सर मैं सच्ची बात बताऊं? मैंने कहा, बताइए. बोला, सर पिछले साल आपने कहा था तो एक हफ्ता मैं मम्मा को बहुत स्नेह प्यार दिया. पहले अगर मुझे मम्मा से चॉकलेट की जरूरत होती थी, आइसक्रीम की जरूरत होती थी, है ना, कोई नया ड्रेस की जरूरत होती थी, मुझे कंप्यूटर गेम्स खेलने का मन करता था, सखियों के साथ बाहर जाने का मन करता था, तो मैं मम्मा से बहुत प्यार से बोलती थी, मम्मा मुझे अलाउ नहीं करती थी, तो मैं एकदम हटियोगी बन जाती थी, बहुत गुस्सा करती थी, नाराज करती थी, भोजन नहीं करती थी, मम्मा को बहुत गुस्सा आता, एक चाटा लगा देती थी, फिर बाद में मुझे वो चॉकलेट आइसक्रीम मिल जाता था. सर पिछले साल आपने होमवर्क दिया, एक हफ्ता मम्मा के साथ मैंने बहुत अच्छा व्यवहार किया, एक हफ्ते के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मेरी मम्मा अति इंद्रिय आनंद में है, लेकिन मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ. एंड अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज, व्हाई शुड आई बिकम गुड? मैं गुड क्यों बनूं? मुझे इससे कुछ फायदा नहीं हुआ, राइट? प्लीज आप में से मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का जवाब आप जरूर बताइए, और जिनको भी हमारे जीवन को पसंद आएगा, जिनका उत्तर पेन ऑफ एक्सलेंस. मुझे अनन्या को क्या जवाब देना चाहिए? यस बहन जी, हाँ बहन जी, बड़े बड़ों को रिटायरमेंट करने के बाद भी ये फिलॉसफी समझ में नहीं आती है. ये छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची है. तो प्लीज पुट योरसेल्फ इनटू द शूज ऑफ द सेवेंथ स्टैंडर्ड गर्ल, राइट? वैसे आपका जवाब मैं बहुत प्यार से स्वीकार करता हूँ, ये तो फाइनली इट इज अंडर द प्रेरोगेटिव ऑफ द ऑनरेबल जज, है ना भाई? आप देखते रहे ना, ध्यान से सुनना कौन से अंकल आंटी ने जवाब दिया. हाँ राइट, नेक्स्ट. हाँ जी बहन जी बोलिए. आप थोड़ा विश्व भ्रमण करिए बहन जी, कितनी अच्छी फिलॉसफी बताई, यीशु को बहुत ज्यादा जरूरत है. वेरी गुड आंसर. अब वो छोटी बच्ची, वो आइसक्रीम चॉकलेट, अब विश्व की फिलॉसफी ठीक है, वो छोटी बच्ची, राइट? वैसे फाइनली चीफ जज यहां बैठे हुए, अब ये आंटी का उत्तर अच्छा लगा या वो आंटी का, वो डिसाइड करेंगे. हाँ तीसरी आंटी बोलिए. अब आप मम्मा की बात कर रहे हैं या अनन्या की बात कर रहे हैं? मम्मा या अनन्या? नहीं अपने मतलब मैं अनन्या को क्या जवाब दूं, ये प्रश्न था मेरा. प्रश्न ये था कि मैं अनन्या को क्या जवाब दूं, तो मैं हमेशा खुश रहूंगी. मैं मतलब कौन, अनन्या या अनन्या की मम्मा? अच्छा नहीं, उसकी खुशी तो तब है जब वो चॉकलेट आइसक्रीम मिलेगा, छोटी सी बच्ची है, राइट? अच्छा भाई लोग कुछ जवाब नहीं देते, क्या जवाब दूं अनन्या को? मैं इसलिए ये प्रश्न का जवाब ढूंढना जरूरत है क्योंकि जैसे ही ये एक एक सेशन होगा ना, तो आप लोग कमरे में जाकर यही डिस्कस करने वाले हैं. डिस्कस क्या करेंगे कि ब्रह्मा कुमारी इसके फैकल्टी स्टेज पर अगर अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है. आज दुनिया का देखो हालत कितना खराब है, कैसे होगा ये सब काम? ये जवाब, ये प्रश्न आज बड़े होकर इसलिए हो रहा है क्योंकि एक समय पर आप और हम भी वो मैरीगोल्ड थे, अनन्या थे, जब हम बहुत सचमुच अच्छे थे. उस समय हमें ये जवाब नहीं मिला, मम्मा ने, पापा ने, स्वामी सर ने ये जवाब नहीं दिया. इसलिए आज हम लोग ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद घर रूम पर बैठकर यही डिस्कस करने वाले हैं. लेकिन आज अगर ये जवाब मिल गया तो आपको वाई शुड आई बिकम गुड, जैसे बहन जी ने कहा, टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव, राइट? यस भाई साहब. हाँ जी. नहीं अनन्या को मैं क्या जवाब दू? अनन्या को मैं क्या जवाब दू? आप जो बोलेंगे ना, मैं अनन्या को वैसे का वैसे ही बोलूंगा. आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ नहीं, वो जज, अभी वो जज को समझ में आया कि नहीं मुझे नहीं पता, हाँ, वो डिसाइड करेंगे सर। हाँ जी, हाँ। अरे भाई मैं अनन्या को क्या जवाब दूं वो मुझे आप बताइए। अच्छा, अरे बाबा आइसक्रीम इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, या जो जरूरत है वो मैं दूंगी। अच्छा ठीक है, राइट, एनी लास्ट आंसर? मैं अनन्या को क्या जवाब दूं? अगर अनन्या गुड होगा तो मम्मा तो एक हफ्ता अतिंद्र आनंद में थी है? नहीं, एक हफ्ते की बात कर रहे हैं, एक हफ्ता मम्मा सुधर गई थी, अतिंद्र आनंद में थी, वो तो ऑलरेडी गुड है ना। तो अनन्या कह रही मेरे को कुछ फायदा नहीं हुआ ना। यस सर, लास्ट आंसर। वाओ, वेरी गुड। मैंने अनन्या को ये जवाब ट्राई किया तो अनन्या ने कहा स्वामी सर आपको मेरे माँ का संस्कार के बारे में पता नहीं है, मेरी पूरा आइसक्रीम पिघल जाएगा सर, कब तक मैं धीरज रखूं सर। बट वेरी गुड आंसर, राइट। एक बार मैं प्रोग्राम कर रहा था, मैंने पूछा क्या जवाब देना चाहिए, एक भाई साहब खड़े होकर बहुत प्यार से कहते स्वामी सर जैसे आपने अनन्या को एक हफ्ते का होमवर्क दिया ना, एक हफ्ता उसकी मम्मा को भी होमवर्क दो मेरा जीवन अतिंद्र आनंद हो जाएगा। अच्छा, जितनों ने जवाब दिया वो जरा खड़े हो जाएं, हमारे जीवन जी जरा देख सके आपको। हाँ, तो हमारे तीन बहनों ने जवाब दिया और चार अंकल ने जवाब दिया। हाँ, जीवन जरा खड़े हो जाओ, बताओ इन सभी में से आपको कौन सा सबसे अच्छा जवाब लगा जीवन। वाओ, ये जवाब इनको पसंद आया, वेरी गुड वेरी गुड। वैसे ऑल आंसर्स आर वेरी गुड। मैं आपको बुलाता हूँ, बहन जी थोड़ा दो मिनट बैठ जाइए, जीवन तुम भी बैठ जाओ। ऑल दिस आंसर्स आर परफेक्टली राइट, लेकिन मैं आज आपको थोड़ा सा इसका जवाब जो मैंने अनन्या पे ट्राई किया वो मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। मैंने अनन्या को कहा इट्स ऑल अबाउट बैलेंस शीट ऑफ लाइफ, मिरेकल इज ऑल अबाउट मिरेकल। किसी के जीवन में होता क्यों है? इट्स ऑल अबाउट द बैलेंस शीट। और मैंने अनन्या को कैसे समझाया, इससे अच्छा भी अगर जवाब होगा तो मैं एंड में अपना ईमेल आईडी बताता हूँ, प्लीज सेंड योर बेटर आंसर, मैं आपको पेन ऑफ एक्सलेंस बाय कुरियर जरूर भेज दूंगा, ठीक है, राइट। मैंने अनन्या से पूछा, अनन्या जब आप रस्ते से जाते हो ना तो आपको चौराहे पर कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जो कुछ मांग रहे होते हैं, कुछ बेच रहे होते हैं। अनन्या से पूछा, अनन्या उन बच्चे और आप में क्या अंतर है? अनन्या ने फट से जवाब दिया, स्वामी सर उनके पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे हैं। मैंने कहा, अनन्या आप तो नहीं कमाते हो ना? तो बोला, मेरे पापा के पास पैसे हैं, राइट। मैंने कहा, अनन्या हमारे जीवन में दो प्रकार का इनकम होता है, एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं विजिबल इनकम, प्रत्यक्ष धन। मैंने अनन्या को कहा, अनन्या राइट, एक हफ्ता अपने मम्मा को बहुत स्नेह और प्यार दिया, मम्मा ने आपको चॉकलेट और आइसक्रीम खरीदने के लिए कोई पैसा तो नहीं दिया, लेकिन एक हफ्ता आपने मम्मा की इतनी दुआएं कमाए कि वो दुआएं जो है दैट बिकम्स योर इनविजिबल इनकम, जिसको हम लोग कहते दिव्य धन। मैंने कहा, अनन्या इस जन्म में आपको अच्छे माता पिता क्यों मिले? क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले जन्मों में आपने इतनी दुआएं कमाए कि आज आपके जीवन में वो चमत्कार दिखाई देता है कि आपके घर में इतने अच्छे माता पिता हैं। अनन्या प्रश्न ये उठता है कि आज आप कौन से कर्म कर रहे हो, कितनी दुआएं कमाने का आप काम कर रहे हो जिससे आपका नेक्स्ट जन्म भी एक चमत्कार से कम ना हो। और जैसे ही मैंने अनन्या को ये कहा तो मैंने देखा अनन्या के चेहरे पर वो रौनक वो चमक आने लगी। फिर मैंने अनन्या को डॉक्टर कलाम का एग्जाम्पल बताया। डॉक्टर कलाम बचपन में बहुत गरीब थे, न्यूज़पेपर बेचते थे। 5 ईयर्स ऑफ राष्ट्रपति भवन के बाद जब वो राष्ट्रपति भवन से निकल रहे थे तो उनके पास 2 सूटकेस थे, एक सूटकेस में उनके कुछ किताबें थी और दूसरे सूटकेस में उनके कुछ कपड़े थे। लेकिन डॉक्टर कलाम इस जीवन से गए तो इतनी दुआएं, इतना दिव्य धन वो कमा कर गए, 100% उनका अगला जन्म वुड बी अ मिरेकल, नो डाउट अबाउट इट। और जैसे ही ये बात मैंने अनन्या को बताई एंड आई कुड सी द फ्लोरा एंड फौना ऑफ इमोशंस ऑन अ फेस, मैं दूसरा दिन अपने MBA फाइनेंस बच्चों को जब ये बताया, एक स्टूडेंट ने खड़े होकर कहा, सर आज तक राइट हमको विजिबल इनकम का डेबिट क्रेडिट बैलेंस शीट बताया जाता था, पहली बार सर आपने दिव्य धन इनविजिबल इनकम के बारे में बताया, थैंक यू वेरी मच। मैं एक दो दिन के बाद फिर से जब मैं उस स्टूडेंट से मिला तो एक स्टूडेंट ने खड़े होकर कहा, सर मुझे दिव्य धन का अनुभव आपको बताना है। मैंने कहा बताइए। बोला, सर उस दिन क्लास के बाद जब मैं ट्रेन से जा रहा था, ट्रेन में इतना भीड़ था, अचानक मुझे सीट मिल गई, मुझे आपकी बात याद आई, सिर्फ मुझे ही सीट क्यों मिला, राइट? मैं बैठ तो गया, फिर अचानक संकल्प आया, अरे मुझे आगे के लिए अपनी दुआएं कमानी है ना। तो वो ढूंढने लगे तो देखा वो लोकल ट्रेन में एक सीनियर सिटीजन, वृद्ध नागरिक, इतना पिस रहे थे। मैंने कहा सर आइए, नजदीक आइए, नजदीक आए। मैं खड़ा हुआ, उनको सीट दे दिया। सर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं आपको अनुभव सुनाना चाहता हूं सर, आगे से मुझे दिव्य धन बढ़ाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोला सर वो सीनियर सिटीजन वृद्ध नागरिक बैठ तो गया, थैंक यू तो छोड़ो, मुस्कुराना तो छोड़ो, एक्नॉलेज भी नहीं किया सर। मुझे इतना दिल को ठेस पहुंचा। मैंने कहा माय डियर बॉय, दिव्य धन का फंडा यह है कि आपने सीट दिया, आपने दुआएं कमाई, आपका दिव्य धन बढ़ गया। अगर वो वरिष्ठ नागरिक धन्यवाद दे देता था तो आपका दिव्य धन थोड़ा कम हो जाता था ना। बोला सर रियली? मैंने कहा यस। बोला सर एक काम करूंगा, आज फिर से उसी लोकल ट्रेन में चढ़ूंगा, उस वरिष्ठ नागरिक को पकड़ूंगा और उसको धन्यवाद दूंगा कि उसने धन्यवाद नहीं दिया जिसके कारण मेरा दिव्य धन इंटैक्ट हुआ। यस, अभी 7:30 को आप खाना खाने जाएंगे ना, जो लोग परोस रहे और जो लोग बना रहे ना, उनका चेहरा देखना। एंड बिलीव मी, नन ऑफ देम आर बीन पेड इवन अ सिंगल नया पैसा। उन्होंने अपना ट्रेन टिकट लेकर आए। आप में से कुछ लोग ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन होगा, ये सारे लोग जो चारों तरफ सेवाएं कर रहे हैं ना, और उनके चेहरे की वो खुशी क्यों है? क्योंकि वो इतना दिव्य धन कमा रहे हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट, राइट? आप एक काम करिए, जब वापस घर जाएंगे, बहुत बहनों को संकल्प चलता है, मैं इतने वर्षों के साथ भोजन बना रही हूं, पति तो छोड़ो, वो तो संस्कार है ही नहीं, थैंक यू के, वो छोड़ो, बच्चे बच्चे कभी तो वो मदर्स डे फादर्स डे के अलावा थैंक यू तो बोल सकते ना। जब कल परसों 3 दिन के बाद आप जाएंगे, जब किचन में जाएंगे, इतना खुशी से भोजन बनाना और ये फील करना कि जितना खुशी से मैं भोजन बना रही हूं मेरा दिव्य धन बढ़ रहा है। और अगर आपने गुस्से से भोजन बनाया, यही मेरा जीवन है क्या, जिंदगी भर मैं जीवन भोजन बनाती रहूं, आपका घर का वास्तु हीलिंग डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर बुलाते रहो वास्तु एक्सपर्ट्स को, अगर कुछ करो भाई नहीं, आप जैसा सोचते हैं वैसा ऑटोमेटिकली बनते हैं। मैं बहन जी को बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करता हूं, आइए बहन जी आइए, हमारे मुख्य जज से आप गिफ्ट लीजिए। हाँ आइए आइए, जल्दी आइए, हमारे पास वक्त थोड़ा कम है। यस, सो इनविजिबल इनकम, दिव्य धन को बढ़ाना, ये बहुत बहुत जरूरत है। एंड द लास्ट वन, एप्लीकेशन इन लाइफ, जीवन में उसको अप्लाई करना बहुत बहुत जरूरत है। बहन जी आपका नाम क्या है? गोल्डी। अरे वाह, हमारा सारा मैरी गोल्ड का ही है। वेरी गुड, मैरी गोल्ड प्लीज कम। वाह वाह वाह, एक जीवन और एक मैरी गोल्ड, खड़े हो जाओ जीवन। अच्छा जीवन, ये जो पेन है ना, आप मैरी गोल्ड को देना। अच्छा बताओ जीवन, ये पेन उनको देने से आपको क्या फायदा होगा?
मुझे बहुत खुशी होगी।
अच्छा इनको क्या फायदा होगा, आप बताइए। हाँ माइक में बोलो। ये पेन अगर आपको दे देंगे तो इनको क्या फायदा होगा?
इनके कर्मों में एक पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी।
सिलेबस के हिसाब से बताइए ना, इनको क्या फायदा होगा? कर्म तो ठीक है,
मन को शांति होगी।
क्या फायदा होगा जीवन, अगर ये पेन उनको देगा तो इनको क्या फायदा होगा? खुशी मिलेगी। रितु बेन क्या फायदा होगा? क्रेडिट हो जाएगा। मेरे सिलेबस के हिसाब से बताइए ना। हाँ ये सर इंटेलिजेंट, वेरी गुड। क्या बढ़ेगा? आपका दिव्य धन बढ़ेगा। ये पेन देने से आपको क्या फायदा होगा?
दिव्य धन बढ़ेगा।
वाह राइट। तो एक काम करना, यहाँ पे ना वो बहुत सारे अच्छे अच्छे किताबें हैं, है ना, अपने स्कूल में जाकर टीचर को किताब देना। टीचर को किताब देने से आपको क्या फायदा होगा? बोलना, दिव्य धन बढ़ेगा, बोल। पेन दे दो, राइट? यस। वो कहते मैं थैंक यू नहीं बोलूंगी, जाओ जाओ जाओ, अपने जीवन को साथ में लेकर जाओ, जाओ 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 जाओ, राइट? यस। सर्वस ऑल्सो कह रहे हैं, जितना दिव्य धन बढ़ेगा, जितनी दुआएं मिलेगी, उतनी खुशियां। दैट विल मेक योर लाइफ अ मिरेकल। एप्लीकेशन इन लाइफ, आज तक हम लोग जो मिरेकल करते थे ना, बहुत कंडीशनल, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे। अगर मिरेकल को वर्क करना है, उसको थोड़ा सा अनकंडीशनल करो, यूनिवर्सल। एंड दैट इज वॉट वी कॉल इट एज अ पावर ऑफ लव, प्रेम की शक्ति। एक बहुत सुंदर डायलॉग है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आप सभी मेरे साथ रीड कर सकते हैं। सभी बोलिए, द हैप्पीएस्ट पीपल आर नॉट दोस गेटिंग मोर बट दोस गिविंग मोर। यस, कितना हम दाता बनकर दे सकते हैं, और स्नेह प्यार के लिए हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और कहते हैं संसार में देयर इज टू लव विच इज वेरी वेरी प्योर, एक है ईश्वर का प्रेम और दूसरा। और छोटू को देखिए, छोटू को माँ के गोद में कितना खुशी का अनुभव कर रहा है। एंड दिस इज बेसिकली योग। एक कहानी मुझे हमेशा अच्छी लगती है जो मैं हमेशा योग के संदर्भ में बताता हूँ. एंड दिस इज डेडिकेटेड टू ऑल मदर्स ऑफ दिस वर्ल्ड. एक बार माँ जो थी ना किचन में नाश्ता बना रही थी. छोटा बच्चा माँ के पास आता और कहता, मम्मा मुझे इस महीने का बिल आपको सबमिट करना है. मम्मा कहती, व्हाट? बोला, यस. तो माँ वो बिल पढ़ती है, मालूम छोटू क्या लिखता? मम्मा इस महीने आपने 3 बार मुझे नीचे दुकान में सामान खरीदने को कहा. एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर ट्रिप 9 रुपीज बिल. मामा अपने बकेट ऑफ पानी को वहां से यहां उठा के रखने के लिए कहा 5 रुपए. मामा अपने छोटी बहन को संभालने के लिए कहा, बहुत कठिन जॉब था मामा, 10 रुपए. सारा महीने का बिल 66 रुपीज. सिंस यू आर माई डियर लविंग मामा, 6 रुपीज फेस्टिवल डिस्काउंट. ओवरऑल 60 रुपए बिल. माँ वो बिल पढ़ते अपने छोटू को देखते, वेरी क्यूट बॉय. माँ भी मुस्कुराती है. वो बिल के दूसरे पेज में जो खाली पेज था ना, माँ लिखती है, 9 महीने मैंने आपको अपने खून से सींचा, नो चार्ज. मैंने आपको चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, नो चार्ज. जब भी आप बीमार पड़ते थे, रात रात बैठकर मैंने आपकी पालना दी, नो चार्ज. जब भी आप स्कूल से थके हारे वापस आते थे, गर्मा गर्म भोजन मैं आपको बनाकर देती थी, नो चार्ज. और मामा नीचे लिखती है 0 रुपीज बिल. अब बेटे को देती है. बेटा वो बिल को पढ़ता, अपनी माँ को देखता और कहता, मामा आई एम वेरी सॉरी. मामा अपना बिल लेता, उसको कट करता है और बड़े अक्षरों में लिखता है, मामा पेड इन फुल. पूरा पेमेंट हो गया. मामा पेड इन फुल बट इनडेप्टेड फॉर एवर. जीवन भर मैं आपका कर्जदार रहूंगा. किसी ने क्या खूब कहा है, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं. जहां में जिसका अंत नहीं, कीप योर मामा हैप्पी, द होल वर्ल्ड विल बी हैप्पी विथ यू. ध्यान से सुनना दोस्तों, कीप योर मदर हैप्पी एंड प्लीज कीप योर मदर इन लॉ ऑल्सो हैप्पी. Now that's very little challenging. It's a very wonderful slogan. It's never too late to live happily ever after. राजयोग मैंने राजा की कहानी से शुरू की, अंत में मैं एक राजा की कहानी से शुरू करता हूँ, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि what exactly is राजयोग. ये कहानी आज से 22 वर्ष पहले मैंने सुनी थी. कि आप लोगों ने भी सुनी होगी, एक राजा था, एक दिन पूरे राज्य में ऐलान करता है कि आप सभी प्रजा को मेरे राज्य महल में आ सकते हो और आपको जो सारी सुविधा के लिए जो भी चीजें हैं मैं रख दूंगा. आप जिस भी चीज को स्पर्श करोगे वो आपका हो जाएगा, आप लेकर जा सकते हो. सुबह सुबह राजा ने अपने पूरे राज्य महल को इतनी सजावट से तैयार की, लोग आ रहे थे एक एक चीज टच कर जो चाहिए था वो लेकर जाते थे. राजा ने देखा एक छोटा सा बच्चा फुदकते फुदकते आ रहा है. राजा को लगा शायद उसको चॉकलेट की जरूरत होगी, आइसक्रीम की जरूरत होगी. राजा उसके पीछे चलता रहा, लेकिन इस बच्चे को बस सबको देखता रहा, किसी को स्पर्श नहीं किया. कुछ समय के बाद राजा चलते चलते थक गया, तो राजा अपने राज्य सिंहासन पर आकर बैठ गया और मंत्रियों कहा कि ये बच्चा अगर कुछ भी स्पर्श करता है ना तो प्लीज मुझे समाचार देना. कुछ समय के बाद वो छोटा सा बच्चा आया और धीरे से राजा को स्पर्श कर लिया. राइट, दिस बॉय वॉज नॉट जस्ट इंटेलिजेंट, ही वॉज वेरी वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट. इस बच्चे को पता था कि अगर मैं राजा को ही स्पर्श कर लूं तो चॉकलेट भी मेरे, आइसक्रीम भी मेरे, सारा का सारा राज्य भी मेरा. राजयोग स्पीक्स अबाउट दिस. हम अपने मन के द्वारा सारे वो जो स्रोत है ना, उस परमात्मा को मन के द्वारा स्पर्श करें. अगले 3 दिन आप यहां पर रहें, अपनी जीवन रूपी नैया को पार लगाने के लिए ये रूहानी उड़ान सीखना है. जब ये रूहानी उड़ान से आप मन के द्वारा उस परमात्मा को स्पर्श करते हो तो स्थूल धन तो छोड़ो, सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता सब ऑटोमेटिकली आपके जीवन में आ जाता है. राजा बनना है हमको. राजयोग टीचर्स अस टू बिकम राजा. June 21st इंटरनेशनल योगा डे में मुझे किसी ने पूछा, इस राजयोग द आर्ट ऑफ लिविंग? मैंने कहा नो, राजयोग इज नॉट जस्ट द आर्ट ऑफ लिविंग, इट इज ऑल्सो द आर्ट ऑफ लिविंग. राज्यों के द्वारा इट्स नॉट सेलिब्रेटिंग लाइफ विथ हैप्पीनेस, इट इज ऑल्सो सेलिब्रेटिंग डेथ विथ हैप्पीनेस. हमारा अंतिम समय इतना ब्यूटिफुल हो कि मृत्यु के नजदीक आकर वो मृत्यु हमारे लिए उत्सव बनना चाहिए. और अगर आप वो संकल्प करेंगे तो ऑटोमेटिकली वही संकल्प सिद्ध होगा. और ये राज्यों का आप यहां से सीख कर जा सकते हो. एक राजा जो था राज्य में, वो सभी को खुशियां देता था और जो भी लोग उनसे मिलते थे राजा इतना खुश होता था. अचानक एक कुछ जब वो वृद्धावस्था में हुआ तो राजा मृत्यु के नजदीक था, तो सारे प्रजा राजा से मिलने के लिए आते थे और राजा उनका चेहरा देखता था तो इतना उदास चेहरा.
तो राजा के मन में संकल्प आया कि मैं हमेशा चाहता था कि मेरे प्रजा हमेशा खुश रहें, लेकिन मेरा मृत्यु इनके जीवन इनके चेहरे को उदास करता है। तो उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, सारे राज्य में ऐलान करा दो कि राजा के कुछ विल है, विल मतलब अंतिम इच्छा, मेरे जाने के बाद मेरी अंतिम इच्छा जरूर पूरा करना। जब राजा ने शरीर छोड़ा तो सारे देश के जो प्रजा थे वो मंत्री के पास आकर पूछे कि राजा के अंतिम इच्छा क्या थी। तो मंत्री ने कहा, राजा के 5 अंतिम इच्छा थी और उसको पूरा करना बहुत बहुत जरूरत है। तो सारे प्रजा ने पूछा उनकी 5 अंतिम इच्छा कौन सी थी, तो बोला सभी चलो। और जब राजा को जो शरीर उस रथ पर रखा गया था, द फर्स्ट इच्छा वॉज, जैसे ही उस रथ पर है ना रथ आगे चलने लगी तो गीत बजने लगा और वो बहुत सुंदर सा गीत था। आप गेस कर सकते हैं कौन सा गीत है? यस,
पहले आज से ज्यादा, आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, इतनी सुहानी ऐसी मीठी।
और जैसे ही राजा का शरीर पार्थिव शरीर लेकर जा रहा था तो ये पूरा जोर से एक गीत बजने लगा, राइट। अच्छा, जब लोग वहां पर उस शरीर को जब वो है ना अग्नि डालते हैं, जैसे ही उसको अग्नि डाला गया तो देखा गया इतने फायर क्रैकर्स फूटने लगे, एंड इट वॉज बेसिकली अ सेलिब्रेशन। पहला दूसरा तो विल सभी को समझ में आ गया, फिर सारे प्रजा ने कहा तीसरा विल क्या था। तो मंत्री ने कहा आप सभी लोग राज्य महल में आओ। जब राज्य महल में पहुंचे तो वहां पर है ना एक बर्थडे केक रखा था और मंत्री ने कहा सब लोग हैप्पी बर्थडे का गीत गाओ और केक को कट करो। तो सबके मन में आश्चर्य हुआ, केक क्यों कट करना? तो मंत्री ने कहा कि राजा ने कहा आत्मा कभी मरती नहीं है, बस आत्मा ने ये शरीर छोड़कर कहीं दूसरे जन्म ले रहे हैं, एंड नेचुरल इट्स अ हैप्पी बर्थडे फॉर दैट ग्रेट सोल। उसके बाद बहुत अच्छा सा भोजन दिया गया सबको, बहुत अच्छा शाही भोजन। और फिर सबने पूछा कि 5वां अंतिम विल क्या था, तो मंत्री ने राजा की तरफ से सबको एक गिफ्ट दिया। और सभी प्रजा ने जब वो गिफ्ट खोला तो जैसे ही वो गिफ्ट खोला तो क्या देखा, उसके अंदर एक मैजिक वैंड था। मिरेकल के लिए फरिश्तों के पास मैजिक वैंड होता है, राइट। और राजा ने कहा ये मैजिक वैंड ऐसा है कि आज सारे दिन ये मैजिक वैंड आपको याद दिलाएगा कि आपको खुश रहना है और जिसको भी आप टच करो राइट, आप ये खुशी के जो वाइब्रेशंस हैं उनको जरूर जरूर फैलाना। अगर आपको दोस्तों अपने जीवन को एक मिरेकल बनाना है तो आज आप सबको ये जीता जागता फरिश्ता बनना पड़ेगा, एक अदृश्य राइट मैजिक वैंड। और आज क्या करना, आज से लेकर राइट कल सुबह तक, ज्यादा दिन का होमवर्क नहीं दूंगा, जब भी आप किसी को देखें आप ये महसूस करना कि वो अदृश्य मैजिक वैंड आप उनको टच कर रहे हो और उनके जीवन में बहुत खुशियां आए। कौन कौन ये संकल्प दूसरों के लिए कर सकता है वो जरा हाथ उठाएं। यस, और जैसे ही आपने दूसरों के लिए संकल्प किया आपका ऑटोमेटिकली जीवन एक मिरेकल बन जाता है। लास्ट एक मिनट का हम मेडिटेशन करेंगे, सभी सीधे बैठे। यस, एक बच्ची ने एक बहुत सुंदर एक इमेज बनाया, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। आज मैं भी आपको एक बहुत सुंदर से एक इमेज दिखाता हूं, इस इमेज को बहुत अच्छी तरह से देखना। और आज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, वापस जब मुंबई दिल्ली पुणे चले जाए ना, कभी बच्चों को डराना नहीं, कभी ये नहीं कहना कि बहुत कंपटीशन हो रहा है, बहुत दुनिया खराब हो रही है, नहीं। परमात्मा कहते हैं कि बच्चे ये पुरानी दुनिया के बाद एक नई दुनिया, बहुत अच्छी दुनिया आने वाली है, अच्छी दुनिया के बारे में लोगों को बताओ। मैं जब ये इमेज बच्चों को बता रहा था तो मैंने कहा बच्चों ऐसी दुनिया आने वाली है जहां प्रकृति बहुत अच्छी होगी, बच्चों के चेहरे में तो इमोशंस ही नहीं आते। मैंने कहा बच्चों ऐसी दुनिया आने वाली है जहां हेल्थ भी होगा, वेल्थ भी होगा, हैप्पीनेस भी होगा। सारे बच्चे मुझे घूर के देख रहे थे। मैंने कहा बच्चों एक ऐसी दुनिया आने वाली है जहाँ एग्जाम और पढ़ाई का टेंशन भी नहीं होगा। सर वो दुनिया कब आएगी सर? मैंने कहा लेकर आनी पड़ेगी। यस, आपके साथ आपके मैरी गोल्ड का बहुत ज्यादा जरूरत है। उन सबको एक अच्छा विजन देना, डराना नहीं लेकिन अच्छा विजन देना। और आज मैं आपको एक सुंदर सा गिफ्ट देता हूँ, राइट? आप अपने लव लेटर में स्टार्टिंग में क्या लिखना है मैंने बता दिया था, एंडिंग में ये लव है ना, ये एंड करना है, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ फैमिली। सभी जोर से बोलिए, फादर एंड मदर आई लव यू। यस, राइट। अब हम एक छोटा सा एक मिनट का, सभी सीधे बैठे और एक मिनट का मेडिटेशन करेंगे, फिर मैं आपको एक बहुत अच्छा वीडियो दिखाऊंगा जहां पर योग मीन्स संबंध जोड़ना। कुछ समय हमारे पास है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस, इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप्स, इससे किसी ने बहुत अच्छी बात बताई है, ये तमाम जिंदगी भी कम है एक दोस्ती निभाने के लिए, ये तमाम जिंदगी भी कम है एक दोस्ती निभाने के लिए। ना जाने लोग कैसे वक्त निकाल लेते हैं दुश्मनी के लिए, ना जाने लोग कैसे वक्त निकाल लेते हैं। तीन दिन बैठे हैं ना, परमात्मा शक्ति को यूज कर फॉरगिव एंड फॉरगेट, पकड़ के नहीं रखो। जितना आप पकड़ के रखेंगे ना उस दुख और दर्द को, उतना राइट हमारा जीवन कटुता से भर जाएगा। बाबा के कमरे में जाकर, परमात्मा के उस मेडिटेशन रूम में जाकर सबको माफ करो, तीन दिन के बाद आप देखना आप इतने हल्के हो जाएंगे। चलिए लेट्स बिगिन दिस वन मिनट ऑफ मेडिटेशन। तो यहां पर जो मैं कहूंगा वो ध्वनि आपके मन तक आएगी और मन की भाषा चित्र है। सिट सेट एंड गेट। सो माय डियर फ्रेंड्स, सिट कंफर्टेबली और यहां बैठकर महसूस करिए कि यू आर अ वेरी पीसफुल, हैप्पी एंड अ पावरफुल बीइंग। आप बहुत शांत स्वरूप हो, जैसे ही आप कहते हैं आप शांत स्वरूप, तो आपके चेहरे में वो शांति रिफ्लेक्ट होगी। यू आर वेरी लवफुल, आपकी आंखों की वो पवित्र दृष्टि, एंड यू आर वेरी पावरफुल, आपके मस्तक पर विश्वास का प्रतीक। अब मन के द्वारा एक उड़ान भरिए, एक सेकेंड में मन के द्वारा आप अपने घर तक पहुंच जाइए। जब आप उड़ रहे हैं तो महसूस करिए कि आपके हाथ में वो मैजिक वैंड, आप घर के सामने पहुंच गए हैं, आपको अपना होम स्वीट होम दिखाई दे रहा है। धीरे से आप अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं, आप अपने घर के सभी फैमिली मेंबर्स को देख रहे हैं और महसूस करिए उस मैजिक वैंड ऑफ हैप्पीनेस को लेकर आप अपने माता पिता, भाई बहने, अपने फैमिली के हर सदस्य को उस मैजिक वैंड के द्वारा स्पर्श कर रहे हैं और उनके जीवन में इतनी खुशियां, आपका घर एक स्वर्ग जैसा बन गया है। आप अपने घर जाकर अपने माता पिता से मिले, आप एक सेकेंड में सर्व आत्माओं के पिता वो परम ज्योति मन के द्वारा जो शांति के सूर्य हैं, प्रेम के सागर हैं, शक्ति के स्रोत है, आप उनको मन के द्वारा स्पर्श कर रहे हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश इस धरती पर गिरता है उसी तरह शांति, प्रेम और शक्तियों के वाइब्रेशंस
धीरे धीरे आपके जीवन में आ रहा है. एंड योर लाइफ हैज बिकम अ मिरेकल. दिल से ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और ये दृढ़ संकल्प करिए, चैरिटी बिगिंस एट होम. कितना भी मतभेद क्यों ना हो, लेकिन मैं शांति से, प्रेम से व्यवहार करूंगी, क्योंकि अगर मैं यह वाइब्रेशन से करती हूं तो मेरा अपना दिव्य धन बढ़ता है. और मुझे यह सत्य समझ में आया कि इस धरती पर हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है, लेकिन कुछ लेकर आए थे, बहुत कुछ दिव्य धन समेट कर आगे की यात्रा पर जाना है. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. थैंक यू वेरी मच.
ओम शांति. तो इस सिट, सेट और गेट की जो मेडिटेशन टेक्निक, जिसे स्वामी भाई ने हमें फरिश्ता ही बिल्कुल बना दिया, इसके लिए थैंक्स करते हुए मैं एक छोटा सा एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूंगी. आज आपने जो भी यहां सुना वो ना सिर्फ सुनने और कहने के लिए, बल्कि हमने स्वामी भाई के जीवन में इसको अनुभव किया, देखा है. आई हैव बीन अ स्टूडेंट, स्वामी भाई की मैं स्टूडेंट रही हूं, और जितना भी समय उन्होंने हमें पढ़ाया, कितने स्टूडेंट्स को उन्होंने इन बातों से, अपने जीवन के, अपने व्यवहार से बहुत इंस्पायर किया, पॉजिटिव सकारात्मक परिवर्तन अपने जीवन में लाने के लिए. इसी थॉट के साथ मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी स्वामी भाई का, कि उन्होंने हमें बहुत बहुत सुंदर ज्ञान की विशेष बातों से हमें फरिश्ता ही बना दिया. थैंक यू सो मच स्वामी भाई. प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी श्री जी के चौकलिया भाई जी को, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्ली से. अभी करेंटली वो हेड कर रहे हैं उड़ान, जो है उड़े देश का आम नागरिक, इस स्कीम को भाई जी जो है वो लीड कर रहे हैं. आप टोटल 38 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कैरी करते हैं, जो इंडिया, ईरान और भूटान से, और 30 इयर्स इनका एक्सपीरियंस रहा है शिपिंग सेक्टर में, जो वेरियस फील्ड्स जैसे कंस्ट्रक्शन, एयरपोर्ट प्लानिंग, ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट में इनका कंट्रीब्यूशन रहा है. अब पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भूटान में अपने प्रिंसिपल कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं, और आप 60 से भी ज्यादा एयरपोर्ट के डेवलपमेंट और अपग्रेडेशन में आपने अपना सहयोग दिया है. भाई जी का बहुत तालियों से हम स्वागत करेंगे. भाई जी, हम चाहेंगे कि आप हम सभी के साथ शेयर करें, ये जो टॉपिक है मेडिटेशन, द मिरेकल ऑफ लाइफ, और जो भी हमने अभी सुना, इसके आधार पर आपका क्या अनुभव रहा है मेडिटेशन का?
रेस्पेक्टेड डिग्निटरीज इन द हॉल, प्रोफेसर स्वामीनाथ, ऋतु बहन, एविएशन एक्चुअली काफी वाइब्रेंट फील्ड है एट द मोमेंट. इनफैक्ट लास्ट 6-7 ईयर्स में ट्रैफिक ग्रोथ डबल हुई है, और मैं आगे उम्मीद करता हूं कि ये उस उड़ान स्कीम की वजह से, जो हम जो आजादी के बाद हमने 75 एयरपोर्ट्स जो शेड्यूल्ड फ्लाइट के लिए ऑपरेशनल हैं, हम 60 विद इन दिस ईयर जोड़ रहे हैं उड़ान स्कीम की वजह से. आपने पिछले कल जो है आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा फुल पेज का, एक उड़ान स्कीम का, लेकिन उसके पीछे हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी है. अभी हम देख रहे थे प्रोफेसर स्वामीनाथ ने मन अच्छा कर दिया, इनफैक्ट उनके लेक्चर से, और मन अच्छा होता है तो माहौल भी अच्छा होता है, और माहौल एविएशन में इस ग्रोथ की वजह से, इस बहुत वाइब्रेंट ग्रोथ की वजह से काफी थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा है पिछले कुछ महीनों में। आपने देखा होगा, कुछ सालों में देखा होगा कि एविएशन में जो जो प्रोफेशनल्स हैं उनके कंडक्ट्स आपने देखे होंगे, जैसे कि दो पायलट ऊपर हवा में 30,000 फीट पे लड़ने लगते हैं, अपना कैबिन छोड़ के बाहर आ जाते हैं और ऑटो पायलट पे एयरक्राफ्ट को छोड़ देते हैं। इट्स ए वेरी सीरियस यू नो ब्रीच ऑफ सेफ्टी नॉर्म्स। तो उनको तो डिसमिस कर दिया गया है फॉर अनदर 5 ईयर्स, लेकिन इट शोज कि कितना प्रॉब्लम है सेक्टर में, मैनेजमेंट में। सिमिलरली आपने दूसरा देखा होगा कुछ महीने पहले कि एक लीडिंग एयरलाइन कंपनी के एम्प्लॉयज ने जो है एक पैसेंजर को मैनहैंडल कर दिया, जबकि वो उनको ट्रेनिंग दी जाती है पैसेंजर हैंडलिंग की। तो प्रॉब्ली इन सब में जरूरी है कि मन का मैनेजमेंट किया जाए। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है किसी भी सेक्टर की ग्रोथ के लिए और किसी भी सेक्टर को सक्सेसफुल होने के लिए। और एविएशन चूंकि काफी अच्छी ग्रोथ चल रही है, तो एविएशन में यह बहुत जरूरी है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट और माइंड मैनेजमेंट एम्प्लॉयज का, प्रोफेशनल्स का हो। और मैं तो समझता हूं कि एयरलाइंस को ये कंपलसरी कर देना चाहिए कि अपने एम्प्लॉयज को वो राजयोग का ट्रेनिंग दें। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं पिछले 7-8 साल से ब्रह्म कुमारी से जुड़ा हुआ हूं। मैंने पहला जो बड़ा कन्वेंशन उनका यही वाला जो है एविएशन टूरिज्म का, माउंट आबू में करीब 4 साल पहले ज्वाइन किया था। उससे पहले ब्रदर पीयूष जी जो हैं हमारे, जो लोधी रोड के हेड हैं, और गिरजा बहन जो वहां पे सेंटर चलाती हैं, वो लोग मेरे ऑफिस में आते थे, हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी में राजीव गांधी भवन में आते थे, लेक्चर्स भी उन्होंने दिए हैं। मैंने फिर उनके बहुत अच्छे इनफैक्ट प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं जो दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुए हैं। एक था उनमें से कि भाई द गॉड इज वन, एंड इनफैक्ट गॉड इज वन। और आज फर्स्ट सेशन में कोई कह रहा था कि दंगे हो गए एंड ऑल दोस थिंग, हम क्यों लड़ रहे हैं ये सब चीज के लिए व्हेन गॉड इज वन। मुसलमान भी यही कहते हैं कि क्या एक लाइट है, अल्लाह एक लाइट है, बाकी तो पैगंबर वगैरह हैं। सभी धर्मों में यही चीज है कि एक लाइट है, ब्रह्म कुमारी में भी है एक लाइट है, तो हम क्यों लड़ते हैं। तो ये सब चीजों के लिए मैं तो समझता हूं कि हमने बहुत कुछ ब्रह्म कुमारी से सीखा है। मैंने पर्टिकुलरली फॉलो करने की कोशिश की है और काफी फायदा हुआ है, इनफैक्ट काफी फायदा हुआ है। मैं पिछले 3-4 साल से काफी टर्बुलेंट प्रॉब्लम्स में था, लेकिन आई कुड हैंडल इट जस्ट बिकॉज मुझे ये ट्रेनिंग थी कि आपको अपना माइंड कैसे मैनेज करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग थी, वी कुड डू दैट। और उसमें मेरी वाइफ का भी काफी सहयोग रहा है, जो रेगुलर जाती हैं हमारे लोधी रोड के आश्रम में, लोधी रोड सेंटर में। वो तो मेडिटेशन भी करती हैं, करीब 15 मिनट का मेडिटेशन करती हैं सिस्टर शिवानी का, वो सुन के एंड ऑल। एंड मैं भी कोशिश करता हूं, मैं योगा प्राणायाम और जॉगिंग वगैरह करता हूं, मेडिटेशन भी करता हूं, लेकिन छोटा सा दो मिनट का, पर मुझे लगता है मुझे लंबा करना चाहिए। और बहुत फायदा होता है इससे, जो है आपका मन हल्का हो जाता है। अगर आप अपने आप को डाइवर्ट कर सकते हो तो मन काफी हल्का हो जाता है इसमें। तो मैं ज्यादा इस पर कुछ नहीं और बोलूंगा। मैंने ये आपको बताया ही है कि हमारे जो मैंने एग्जांपल आपको एयरलाइंस का दिया, लेकिन हमारे यहां, मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हूं, हमारे यहां जो स्ट्रेसफुल जॉब जो करना होता है ट्रैफिक बढ़ने के साथ में, दिल्ली में हमारे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स 1200 अराउंड द मैक्सिमम जो अभी तक गया, करीब 1200 फ्लाइट्स पर डे हैंडल उनको करने पड़ते हैं, और उसका रिजल्ट ये है। और कैपेसिटी एयरपोर्ट की धीरे धीरे कम होती जा रही, मतलब वो सैचुरेट होते जा रहे हैं। हमको एक और रनवे बनाना पड़ता है, तो ये 1200 फ्लाइट्स को हैंडल करने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी, दे अंडरगो लॉट ऑफ स्ट्रेस, इनफैक्ट उनको हम स्ट्रेस अलाउंस देते हैं, बट मनी कांट सॉल्व दैट प्रॉब्लम। हम उनको स्ट्रेस अलाउंस देते हैं, उनको रेटिंग अलाउंस देते हैं, और उनके हमने वर्किंग पीरियड भी कम किया है, 8 घंटे नहीं देते हैं, उनको 6 घंटा देते हैं, उनके लिए रेस्ट रूम वगैरह भी हमने बना रखे हैं कि वो ठीक है 3 घंटे के बाद रेस्ट करें, बट मुझे लगता है उनको 10 मिनट का राजयोग का ये मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए, और सो दैट उनकी बैटरी रिचार्ज हो जाए। और ये मुझे लगता है एक बहुत अच्छा कदम है ब्रह्म कुमारीज का पूरे हिंदुस्तान में, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में इनके सेंटर्स हैं, और इनसे अच्छा मेरे ख्याल से स्पिरिचुअल जो शिक्षा देते हैं वो और कोई नहीं है, बाकी सब रिलीजन के बेसिस पे करते हैं, इनका स्पिरिचुअल जो टीचिंग है वो स्पिरिचुअल है पूरी जो है, और वही जोड़ता है, इनफैक्ट जो है स्पिरिचुअल टीचिंग ओनली कैन यू नो यूनाइट द कंट्री, यूनाइट द सोसाइटी। मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा इतने अच्छे वक्ता के बाद जो है बहुत बोलने बोलने ठीक नहीं है, मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी ब्रह्म कुमारी ने यहां आने की। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सर, आपने बहुत ही वंडरफुल हमारे साथ शेयर किया कि कैसे आज इस इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली टेंशन जो बढ़ रहा है उसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि हम मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन को अपने जीवन में यूज करें और अपने जीवन को बहुत ही स्ट्रेसफुल बनाएं। बाहर की तो जो भी फैसिलिटीज है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ हम अपने अंदर को ठीक करें। जितना हम अंदर को ठीक करेंगे मेडिटेशन के द्वारा, जीवन जरूर जरूर मिरेकल बन ही जाएगा।